ओम शांति। आप सभी को पता होगा ये कोरोना समय में बहुतों का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जिसके कारण बहुत भाई बहनों का मौत भी हो गया। मैं एक सिंपल एक्सरसाइज सिखाता हूं, देखना आपके लंग्स फेफड़े एकदम एक्सपांडेड हो जाएंगे, ऑक्सीजन सेचुरेशन तुरंत बढ़ जाता है। डेली करना चाहिए। हम जो व्यायाम करते हैं, चार प्रकार के व्यायाम होते हैं। एक होता है एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है एनएरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन जरूरत नहीं है। तीसरा होता है फ्लेक्सिबिलिटी, शरीर को लचीला बनाने के लिए। चौथा होता है ब्रीदिंग, सांस की। तो चारों प्रकार का जो एक्सरसाइज करता है, एरोबिक एक्सरसाइज से आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका हार्ट, आपके फेफड़े मजबूत होंगे। एनएरोबिक से आपका मसल्स बोन स्ट्रांग होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से, जिसको आसन कहते हैं जी, तो उससे आपका बॉडी लचीला होगा। और प्राणायाम करेंगे, जिसको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कहा जाता है, तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक रहेगा। तो मैं अभी आपको एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाता हूं, जो रोज करना चाहिए सभी को, जो शुरुआत में बाबा ने सभी को सिखाया था। और हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से हम भक्ति मार्ग में भी करते थे, आजकल भूल गए हैं। दो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक है लंबा सांस लेना और ओम ध्वनि का उच्चारण करना, उसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसमें आपका फेफड़े फूलेंगे। नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं कितना लेते हैं, 400-500 ml, परंतु हमारी लंग्स का कैपेसिटी 2.5 liter है, कम से कम 5-7 गुना ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम करते नहीं है। फिर जब जरूरत पड़ता है, सीढ़ी चढ़ते हैं, कहीं थोड़ा तेज भागते हैं, होने लगते हैं। तो रेगुलर अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो हांपेंगे नहीं कभी। दूसरी बात है, जैसे शंख ध्वनि करते हैं, पहले जमाने में भक्ति में शंख ध्वनि करते हैं, उसको कहते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। मैं दोनों आपको करा के सिखाऊंगा, अभी देखना फ्रेश लगेगा। करेंगे सभी? बाबा शुरू शुरू में सभी को ओम ध्वनि कराते थे। ओम कैसे करना होता है ये भी इसका मेथड है। ओम शब्द में 3 अक्षर है, अ उ म। पहले ओ अ कहना है, अ फिर उ फिर म। तो ये जो इसका रेशियो कैसे होना चाहिए, अगर अ 1 मिनट बोला, उ 2 मिनट और म 3 मिनट होना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, फिर आप करना मेरे साथ। एक पहले लंबा सांस लेना, पहले तो सीधा बैठना, एकदम अलर्ट होकर सीधा बैठना, फिर लंबा सांस लेना और पहले अगर 1 मिनट होता है, वो 2 मिनट होगा, म 3 मिनट होगा, उस हिसाब से उस रेशियो से उसका उच्चारण करना होता है। ये विधि है। तो हम सभी करेंगे अभी 3 बार, लंबा सांस लेंगे सभी पहले, फिर 2-3 सांस ले लेना, तुरंत ही नहीं, 2-3 सांस लेके फिर से लंबा सांस, फिर से 2-3 सांस लीजिए, फिर लंबा सांस, शांति शांति शांति। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर रोज करेंगे सवेरे शाम, देखना आपके फेफड़े एकदम फूल जाएंगे, कभी भी हांपेंगे नहीं। ये रोज करना चाहिए। दूसरा, जैसे शंखनाद करते हैं, आप देखे होंगे शंख ध्वनि जब करते हैं, लंबा सांस लेते हैं, शंख ऐसे रख के जोर से फूंक मारते हैं, तो ये पूरा गाल फूल जाना चाहिए। पर्स लिप, ये हमारा लिप पर्स जैसा होना चाहिए। जैसे पहले जमाने में लोग पैसा रखते थे ना, वो कपड़े का होता था, सामने रस्सी ऐसा खींच लेते थे, ऐसा हो जाता था। मुंह भी ऐसा होना चाहिए। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, देखना, फिर ऐसा करना, देखना आपकी छाती एकदम पूरा फूल जाएगा फेफड़ा, और ऑक्सीजन सेचुरेशन एकदम बढ़ जाता है। तो लंबा सांस लेना, पहले हाथ को ऐसे मुट्ठी करके यहां रख के फिर फूंक मारना, देखो कैसे। ऐसे तो ये तीन बार करना है रोज सवेरे शाम को। आप करके देखिए, देखना कभी भी हांपेंगे नहीं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एकदम ठीक रहेगा। करेंगे, चलिए लंबा सांस अभी। जल्दी छोड़ दिए, लंबा सांस लेना चाहिए। लंबा सांस लेंगे और मुंह बंद करके फूंक मारेंगे। चलो दोबारा, आपका गाल फूलना चाहिए। गाल फूलेगा तो ये आपका फेसियल मसल का भी एक्सरसाइज होगा। तीसरी बार, ओम शांति। आप देखना एकदम फ्रेश लगेगा आपको। जब भी आपको सुस्ती आती है, आप देखना उस समय खाली लंबा लंबा सांस भी 10 बार ले लो, आपकी सुस्ती एकदम भाग जाएगी। आप खाली लंबा लंबा सांस लेना, ऐसे 10 बार कर दो, देखना आपको सांस एकदम सुस्ती भाग जाएगी। आपको चाय पीने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको पता है, चाय एक कप छोड़ेंगे तो साल में 5 किलो वेट कम हो जाता है। जो ओवरवेट है, जिसका वेट ज्यादा है, सिर्फ एक कप चाय छोड़ो, देखो फिर साल में आपका 5 किलो वेट कम हो जाएगा। चाय हमारे देश का पेय नहीं है। देवताएं चाय पीते हैं, लक्ष्मण पीते होंगे नहीं? चाय ये विदेशी लोग, वहां बहुत ठंडी होती है, बर्फ गिरता है, इसलिए वो लोग पीते हैं। जब अंग्रेज लोग हमारे भारतवर्ष में आए, हमको चाय कॉफी पिलाना सिखाए, और आज हम सभी एडिक्टेड हो गए हैं। चाय हमारे एपिटाइट को कम कर देता है, हमारे एसिडिटी बढ़ाता है, वेट बढ़ाता है। क्यों लेना है चाय? चाय अच्छी चीज नहीं है। तो जब भी सुस्ती लगती है, आप देखना लंबा लंबा सांस 5-7 बार कर लो, एकदम देखना ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा, एकदम फ्रेश लगे आप, एकदम लाइट लगेगा। चलिए, आज बहुत एक सुंदर आप सभी बाबा के घर में आए हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं, हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत बहुत भाग्यवान, लक्की, लास्ट सो फर्स्ट सभी, ठीक है, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। मैं कुछ बातें आपको शेयर करूंगा। आप सभी को यहां स्वयं की पहचान मिली, परमात्मा की पहचान मिली। कौन है परमात्मा? कौन है बोलो, क्या नाम? नशे से नहीं बोल रहे, धीरे धीरे बोल रहे। कौन है? शिव बाबा। दिल से बोलना चाहिए, आवाज से। शिव बाबा के कितने नाम है जानते हो? शिव बाबा के भक्ति मार्ग में 1000 नाम बताते हैं, शिव सहस्र नाम बताते हैं। लेकिन मां बाप अपना नाम बच्चों को खुद बताते हैं। भले बच्चे मां बाप को किसी भी नाम से बुलाए, पापा, पिताजी, डैडी, फादर, ये कोई नाम तो नहीं होता है, लेकिन जो सही शुभ नाम है वो भगवान हमारे माता पिता होने के कारण स्वयं ही खुद कहते हैं मेरे बच्चे मेरा नाम शिव है क्योंकि मैं कल्याणकारी हूं, तुम सभी के पिता हूं। तो शिव बाबा के हजार नाम में से एक नाम है नटराज। सुने हैं आप सभी नटराज क्या मतलब है? नट माने क्या? नट माने क्या? हाँ, जो गांव में आप देखे होंगे दो बांस बांध देते हैं और उसके ऊपर रस्सी बांध के उसके ऊपर ट्रिक्स दिखाते हैं, उनको नट कहते हैं। कलाबाज जो कला दिखाने वाले हैं उसको नट कहते हैं। तो शिव बाबा का नाम नटराज माने क्या क्या मतलब? जितने दुनिया में कलाकार हैं वो सभी का राजा है वो, अर्थात सर्वोच्च कलाकार कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा आके क्या करते हैं ये संसार में? भगवान आके क्या करते हैं संसार में? भगवान आकर क्या करते हैं बोलो बोलो? हम सभी को कला सिखाते हैं, हम सभी को 16 कला संपूर्ण बना देते हैं। इसलिए बाबा को मैं बताया कि बाबा का नाम नटराज है। ये सृष्टि रंगमंच है, मानव है कलाकार, कहावत है। सृष्टि एक रंगमंच है, मानव है कलाकार। लेकिन हम सभी में जितने भी कलाकार हम सभी हैं यहां भिन्न भिन्न अभिनय तो कर रहे हैं। कोई एक जज है, कोई एक टीचर है, कोई एक वकील है, कोई एक डॉक्टर है, हम सभी भिन्न भिन्न रोल प्ले कर रहे हैं। अगले जन्म में फिर चेंज हो जाएगा, अगले जन्म में फिर चेंज हो जाएगा। ये संसार एक नाटक है, यहां अभिनय कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कलाकार है हमारा बाबा शिव बाबा। वो हमें ऐसी कला सिखाते हैं जो हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। बाबा कौन सी कला सिखाते हैं? सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है? बहुत सारी कलाएं हैं दुनिया में। कोई बहुत अच्छा गीत गाता है तो इसको गायन की कला है, कोई बहुत अच्छा बोलता है तो इसको बोलने की कला है, कोई डांस करता है बहुत अच्छा, इसको नृत्य की कला है। इसके पास बहुत सारी कलाएं दुनिया में है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कला कौन सी है? यस, किसने ठीक बोला? कौन बोला? यस, सबसे श्रेष्ठ कला है जीवन जीने की कला। हमको सब कुछ आता है लेकिन घर में रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज मूड खराब, लेकिन डांस करने में हम परफेक्ट हैं, गीत गाने में परफेक्ट हैं, म्यूजिक बजाने में परफेक्ट हैं, क्रिकेट खेलने में परफेक्ट है, लेकिन घर में रोज लड़ाई झगड़ा। ये सब कला होते हुए भी जीरो, क्या काम का है? तो जिसको जीवन जीने की कला आ गया वही सबसे सुखी मानव है इस संसार में। आज हम सभी मनुष्य दुखी क्यों हो गए हैं? क्योंकि हम जीवन कैसे जीना है, जीवन क्या है, संसार में कैसे जीना है हम भूल गए, जिसके कारण हम सभी का जीवन दुखमय हो गया। इसलिए भगवान आए हैं हमको श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाए। लेकिन हम सभी पुरुषार्थी हैं, एक होता है व्यवहार, दूसरा होता है पुरुषार्थ, तीसरा होता है परमार्थ। ये सब भिन्न भिन्न शब्द सुने होंगे। व्यवहार माना जीवन जीने के लिए जो कुछ करते हैं हम घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, परिवार है, परिवार को चलाने के लिए जो भी धंधा हमको करना पड़ता है, ये सब जीवन जीने के लिए जो भी उपाय हम अवलंबन करते हैं उसको हम व्यवहार कहते हैं। ये तो करना ही पड़ेगा जीवन संसार में रह के। लेकिन दूसरा होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? जो कुछ आप पुरुष अर्थ करते हो, ये शरीर को प्रकृति कहा गया है, इसमें आत्मा पुरुष है, राजा है। अभी सूरज भाई जी सुना रहे थे ना, स्वमान में रहो, आत्मा हो, मैं आत्मा देख रहे आंखों द्वारा, तो आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो आत्मा के लिए जो कुछ करते हो ये सब पुरुषार्थ है। आप अपना घर कहां कहां, छत्तीसगढ़ कहां कहां, हिमाचल प्रदेश छोड़ के माउंट आबू में क्यों आए हैं? आप सभी क्या सीखने के लिए आए? यहां व्यवहार सीखने आए हैं? नहीं, आपको यहां कोई जीवन घर में कैसे जीना है, बिजनेस कैसे करना है, खाना कैसे बनाना है, ये तो नहीं सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है? आत्मा को कैसे हम ठीक रखें, आत्मा के लिए क्या करना है हमें, वो आपको सिखाने के लिए यहां बुलाया गया है। आत्मा कैसे निरोगी रहे, शरीर को निरोगी रखना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन आत्मा को कैसे निरोगी रखें ये डॉक्टर्स को भी नहीं पता, क्योंकि डॉक्टर्स को गया आत्मा का नॉलेज तो है ही नहीं। तो आत्मा को कैसे हम ठीक रखें, आत्मा कैसे स्वस्थ हो, आत्मा कैसे शक्तिशाली बने, आत्मा कैसे, आत्मा के लिए जो भी कुछ करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। और तीसरा है परमार्थ, परमार्थ ना, जो परमात्मा के लिए जो कुछ हम करते हैं वो परमार्थ है। आप हमारे जितने भी पुराण शास्त्र आदि है, आप सभी देखना महाभारत गीता में, आप महाभारत सीरियल देखे होंगे सभी, महाभारत सीरियल में जो टाइटल संग था महेंद्र कपूर जी ने गाया था, याद है वो, ये कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की, महाभारत। तो हमें भगवान हमको पुरुषार्थ करना सिखाते हैं, परमार्थ क्या है सिखाते हैं। व्यवहार तो दुनिया में बहुत लोग सिखाने वाले हैं, आपको कोई सिलाई करना सिखा देगा, कोई और क्या प्रोफेशन सिखा देगा, बहुत सारी दुनिया में वो सारा सिखा देंगे कलावाजी। परंतु जीवन में आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा की प्रगति कैसे हो, आत्मा की उन्नति कैसे हो, और परमार्थ के लिए हमें क्या करना है, वो कोई नहीं सिखा सकता है सिवाय शिव बाबा के। तो बाबा हमें वो कला सिखाते हैं। तो हम सभी पुरुषार्थी हैं, जो भी परमात्मा को पहचान लिए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान जिनको पता हो गया और नियमित राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम आत्मा को जो जन्म जन्मांतर से अनेक विकर्म करते करते आत्मा बिल्कुल एकदम पतित हो गई है, आत्मा को कैसे पावन बनाए, इसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों सवेरे सवेरे अमृतले उठते हैं नींद को त्याग करके, लोग तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोए रहते हैं, हम क्यों उठते हैं जल्दी, क्यों बाबा की मुरली अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, हमें आत्मा को भी ठीक करना है। तो जो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम सब बाबा के पुरुषार्थी बच्चे हैं, लेकिन पुरुषार्थ की रफ्तार भिन्न भिन्न है, सबका अलग अलग है। कोई धीरे धीरे पुरुषार्थ कर रहा है, कोई तीव्र गति से कर रहा है, किसकी चलती कला है, किसकी दौड़ती कला है, किसको जंप लगाने की कला है, किसको चढ़ती कला है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है उड़ती कला, सबसे श्रेष्ठ है उड़ती कला। आज जमाना है उड़ने का। मुझे बचपन में याद है, हम कहीं दूर जाते थे, रास्ता वास्ता तो इतना होते नहीं थे, तो बैलगाड़ी में जाते थे। बैलगाड़ी में जाना कितना टाइम लगेगा सोच लो। आज अगर आप कहीं जाओगे बैलगाड़ी में, यहां से अमेरिका जाना है बैलगाड़ी में, कितने दिन में पहुंचोगे? अभी ट्रेन में 10 घंटा लगता है, तो फ्लाइट में 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अभी उड़ती कला का जमाना है, कोई ट्रेन में आजकल जाना पसंद नहीं करता है, फ्लाइट का भी इतना सस्ता हो गया, फ्लाइट में जाओ पहुंच जाओ फटाफट। तो जमाना उड़ती कला का है। तो बाबा इतने समय से हम सभी को पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो समय है अभी उड़ती कला का समय है, अभी चलती कला का समय नहीं, दौड़ती कला का भी नहीं, जंप लगाने का भी नहीं, अभी चढ़ती भी नहीं, थकेंगे हांपेंगे, उड़ने में ये सब नहीं होता है। तो उड़ती कला का समय कहा जाता है, उड़ती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा उड़ती कला, चढ़ती कला से भी ऊपर उड़ती कला चाहिए अभी। क्योंकि बाबा ने कहा है तुम सभी आधार मूर्त हो, विश्व के लिए उद्धार मूर्त हो, तुम्हारी चढ़ती कला होगी तो सबकी चढ़ती कला होगी, तुम उतरती कला तो सबकी उतरती कला हो जाती, तो तुम आधार मूर्त हो। तो हम सभी बच्चों को अभी जीवन में पुरुषार्थ में अभी उड़ने का समय है, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, समय बहुत कम है। तो क्या करना पड़ेगा, अभी चलने में पहुंच पाएंगे, चलने से नहीं पहुंच पाएंगे, अभी उड़ना पड़ेगा। उड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उड़ना चाहते हो, मनुष्य के तो पंख नहीं है कैसे उड़ेगा, गीत है ना एक, पंख होता तो उड़ा, तो पंख तो है नहीं कैसे उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे। देखिए पुरुषार्थ तीव्र गति का हो उसको उड़ती कला कहा जाए, इतना तीव्र पुरुषार्थ करें कि समय से पहले हम मंजिल पर पहुंच जाएं। तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, अभी हम पुरुषार्थ का हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी स्थिति जो संपूर्ण स्वरूप बाबा ने हमें जो टारगेट दिया है ऐसा बनना है इस जीवन में, क्योंकि अंतिम जन्म है। अभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं, कल्प में और किसी भी युग में और कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो किया सो हो गया, 5000 साल का हम अभी पुरुषार्थ करके अपना कमाई जमा कर रहे हैं। जैसे जो अच्छे होशियार बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जब सीजन होता है कमाई का, दिन रात एक करके खाना भूल जाएंगे, पीना भूल जाएंगे, सोना भूल जाएंगे, खूब कमाई करके इकट्ठा कर लेंगे, फिर साल भर उनका कमाई हो ना हो कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार ये सारे सृष्टि चक्र में संगम युग एक ही युग है जिस समय हम कमाई करते हैं, बाकी कल्प में किसी भी युग में आप कमाई नहीं कर सकते। फिर जो कमाया हुआ बैठ के खाएंगे, तो अभी कितना मेहनत करना चाहिए। कुछ बाबा के बच्चे बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, फिर हड़बड़ा तड़बड़ा करके एकदम पूरा गिर पड़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। कुछ बाबा के बच्चे स्लो एंड स्टडी, बहुत तीव्र भी नहीं बहुत धीमे भी नहीं, एक रस चलते रहते चलते रहते चलते रहते वो मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसलिए बाबा के तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक है महारथी, दूसरा है घुड़सवार, तीसरा है पदात प्यादे। जो प्यादे होते धीरे 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 चलते वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे, अभी चलने का समय गया। घुड़सवार बैलेंस किए बिना एकदम खड़बड़ 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 दौड़ेंगे, फिर गिर पड़ेंगे, फिर रुक जाएंगे, वो भी ठीक नहीं है। अभी महारथी जैसा एक रस अचल अडोल होके चलते रहना ताकि मंजिल तक पहुंचना। हमारा लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है, पुरुषार्थ का मंजिल क्या है? यस, किसने बोला? बाप समान बनना। ठीक है, बधाई। इस संगम युग में हमें बाप समान बनना है, भविष्य में हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, विश्व का मालिक बनना है। बाप समान बनना माने क्या? शिव बाबा समान अशरीर बनना, ब्रह्मा बाबा जैसा फरिश्ता बनना। तो और भविष्य में जो देवता स्वरूप बनेंगे, देवताओं की जो महिमा है, बाबा कहते हैं इस जीवन में तुम्हें धारण करने हैं। सत्युग में तो तुम्हारा खाली शरीर चेंज हो जाएगा, लेकिन संस्कार यहां से लेके जाओगे। जो देवताओं की महिमा है, सारी महिमा यहां से तुमको धारण करके जाना है, यह है असली पुरुषार्थ। देवताओं की महिमा बताइए क्या है? देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म, हो गया? नहीं, देवताओं की और भी महिमा है। देवताओं के जीवन में क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, जो विश्व के मालिक होंगे, बाबा ने जो भी महिमा बताया देखना, उसमें जो संपन्न, संपूर्ण और सर्व, ये तीन शब्द जिसमें आता है वो देवताओं की महिमा है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपन्न संपूर्ण सर्व, ये तीन शब्द आ रहा है। तो देखिए, अभी हमें बाबा कहते हैं कि तुम्हें अष्ट शक्तियां भी धारण करने हैं, ईश्वरीय शक्तियों को जीवन में समाने हैं, क्योंकि एक भी शक्ति की कमी होगी तो माया हरा देगी। तो अभी हमें पुरुषार्थ द्वारा सर्वशक्ति संपन्न भी बनना जरूरी है, क्योंकि देवताएं जो होंगे, जो विश्व का मालिक होगा, वो कितने शक्तिशाली होगा? सारे विश्व पर राज्य अधिकार चलाने वाला कितने शक्तिशाली होगा? तो अभी से ही हमें सर्वशक्ति संपन्न बनना है, तो ही हम विश्व का मालिक बन सकते हैं। तो सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न भी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी भी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म भी, इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं, यह है देवताओं की कंप्लीट महिमा। इच्छा मात्रम अविद्या, संपूर्ण जीवन मुक्त देवी देवताएं। तो ये सारी गुण, कलाएं, शक्तियां, मर्यादाएं सब यहां ही जीवन में धारण करने हैं, यह है पुरुषार्थ। तो हम बाबा ने कहा है, अगर एक भी गुण कम हो गया तुम सत्युग का प्रारंभ में नहीं आ सकते हो, एक भी गुण कम हो गया तो तुमको 16 कला संपूर्ण नहीं कहा जाएगा, ये बाबा के शब्द है। तो इसलिए हमें पुरुषार्थ द्वारा हमारे मंजिल जो है ऐसा बनना है, हमें बाप समान अशरीर बनना है, बाप ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना है और देवताओं समान सारे गुणों के अधिकारी बनना है। वास्तव में जो कलाएं हैं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वो भी सर गुण ही है, ज्ञान भी एक गुण है। आत्मा के सात गुण जो बताते हैं अनादि गुण, उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला क्या आता है? ज्ञान आता है। तो ज्ञान भी एक गुण है और सबसे लास्ट क्या आता है? शक्ति है। शक्ति भी एक गुण है। तो ज्ञान भी एक गुण है, शक्ति भी एक गुण है। देखा जाए तो ये सब कुछ एक गुण है। तो बाबा सर्वगुणों का सागर है। ये सभी गुणों को जीवन में धारण करना, ये हमारा मंजिल है। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं धीरे धीरे करने से नहीं चलेगा, अभी तीव्र पुरुषार्थ करो, अर्थात उड़ती कला। जब तक उड़ती कला में नहीं पुरुषार्थ करोगे, अभी पीछे रह जाओगे, सत्युग का प्रारंभ में नहीं आ पाओगे। बाबा ने कहा एक कला भी कम हो गया ना, सत्युग के बीच में आओगे। दो कला कम हो गया तो सीधा त्रेता युग में आएंगे, चंद्रवंशी बनेंगे। तो पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते हैं अभी चलती कला, चढ़ती कला, ये सब कला अभी नहीं चाहिए, अभी उड़ती कला चाहिए। तो उड़ती कला के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन उड़ सकता है? एक एरोप्लेन देखिए, एरोप्लेन के लिए जो फ्यूल लगता है पेट्रोल है, वो डबल रिफाइन फ्यूल होता है। वो गाड़ी मोटर में जो फ्यूल होता है वो फ्यूल से नहीं चलेगा, डबल रिफाइन होता है। उड़ने के लिए हमारे साधन क्या है? वास्तव में मनुष्य कोई शरीर से तो नहीं उड़ सकते हैं। कैसे उड़ेंगे? संकल्पों से उड़ेंगे। हमारे संकल्प डबल रिफाइंड होना चाहिए, तो ही हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। जैसे प्लेन को उड़ने के लिए उसका पंख भी चाहिए और डबल रिफाइन पेट्रोल चाहिए। हमारे पंख है उमंग उत्साह, ये दोनों पंख है, और हमारे डबल रिफाइन संकल्प शक्ति, अर्थात संकल्प में सकारात्मकता भी हो और समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प और सकारात्मक संकल्प, इसको कहते हैं डबल रिफाइन। शक्तिशाली संकल्प भी हो और सकारात्मक संकल्प भी हो, पॉजिटिव भी हो, पावरफुल भी हो, तब कहेंगे डबल रिफाइन फ्यूल। तो संकल्प द्वारा ही हम उड़ सकते हैं। बाबा ने संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, महान शक्ति है। आज तक इसको किसी ने रियलाइज नहीं किया था। बाबा ने हमें बताया कि खाली तुम संकल्प को ठीक कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो बाबा हमारा संकल्प को सुधारते हैं, संकल्प से ही सृष्टि रचते हैं। भगवान संकल्प से ही सृष्टि रचा, हम सुनते हैं शास्त्रों में। तो संकल्प में इतनी शक्ति है। आज विज्ञान के जितने भी साधन हम देख रहे हैं, किसी न किसी के मन में थॉट्स चला तो ही तो वो बनाया ऐसा। जैसे राइट ब्रदर्स को मन में आया कि पंछी जैसे ऊपर उड़ते हैं, हम भी उड़ सकते हैं, हम भी बने, तो लोग उनको पागल समझे, बहुत प्रयास किए, अंत में सफल हो गए। आज हम सभी उड़ रहे हैं। जितने भी आप मोबाइल देख रहे हो, जो भी साधन विज्ञान के देख रहे हो, किसी के मन में विचार आया कि मैं एक छोटा सा इतना इसमें, कभी सोचा था? आज से जो अगर 50 साल पहले कहा जाता कि एक इतना छोटा सा ही मशीन में आप विदेश में किसी के साथ भी बात कर सकते हो, उसका चेहरा भी देख सकते हो, तो पागल हो गया क्या कहेंगे? लेकिन आज प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, तो किसी के मन में विचार आया तो बना के दिखाया। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं तुम अपने संकल्पों द्वारा उड़ सकते हो। आज कोई व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहता है, तो देखने वाले क्या कहते हैं? क्या भाई तेरे पांव तो जमीन में नहीं है, कहते ना? नहीं। तो जीवन में अगर सदा खुशी हो, आनंद हो, उमंग उत्साह हो, तो सदा उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। तो इसका आधार है हमारी स्मृति। बाबा हमें ज्ञान और योग, ये जो दो सब्जेक्ट हमें बाबा पढ़ाते हैं, ये दो सब्जेक्ट के आधार से ही, ज्ञान और योग, ये दोनों को पंख भी कह सकते हैं, ये दोनों के आधार से हमें उड़ती कला सिखाते हैं। ज्ञान और योग, जो योगी होते हैं, अब देखना भारत में जो बड़े बड़े सिद्ध योगी हुए हैं, उनका नाम वो परिवर्तन कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। पहले का नाम और कुछ होता है, जब वो सिद्धि प्राप्त करते हैं उनका नाम को चेंज कर दिया जाता है, वो आनंद शब्द से अपना नाम जोड़ देते हैं, शिवानंद, चिदानंद, विवेकानंद, दयानंद, आनंद शब्द से जोड़ते हैं। आनंद माना एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अति खुशी, जो बहुत खुश रहता है उसको आनंद विभोर हो गया कहते हैं। तो भगवान योगीश्वर कौन है? योगीश्वर सभी योगियों का ईश्वर है, शिव बाबा। और ब्रह्मा बाबा को योगेश्वर कहता है। एक है योगीश्वर, दूसरा होता है योगेश्वर। ओ और ई मिलाने से ए होता है। योग का ईश्वर अर्थात योग का मास्टर है ब्रह्मा बाबा। इसलिए हमारे एक गीत है, याद होगा सभी को, ये योगेश्वर ब्रह्मा बाबा, सुने होंगे। तो ब्रह्मा बाबा योग का मास्टर है, लेकिन सभी योगियों का ईश्वर है शिव बाबा, योग सिखाने वाला है शिव बाबा। तो बाबा को इसलिए कहते हैं बाबा सदा आनंद का सागर, सच्चित आनंद स्वरूप, वही हमें सदा आनंदित रख सकते हैं, प्रफुल्लित रख सकते हैं। तो बाबा हमें ऐसी विधि सिखा देते हैं जीवन में सदा आनंद ही आनंद। तो सदा देखने वाले भी कहें तू तो उड़ रहा है भाई, इधर तो है नहीं तू। तो जीवन में उड़ने के लिए एक तो चाहिए नशा। अगर जिसको नशा होगा वो भी सदा देखना, जैसे फूल पी दिया होगा तो देख लेना कैसा हालत उनकी, ओह इधर नहीं रहता इस दुनिया में, और कहीं दुनिया में होता है। तो यहां भी स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन हो गया ना, लोग कहेंगे तुम तो उड़ रहे हो भाई, तुम तो इधर है नहीं। तो एक होता है नशा, दूसरा है खुशी। तो नशा और खुशी के आधार से हम सदा उड़ सकते हैं। तीसरा है उमंग उत्साह, लेकिन उससे पहले भी हिम्मत। कोई भी कार्य करने के लिए हिम्मत चाहिए, और उस कार्य को पूरा करने तक दृढ़ता चाहिए, हिम्मत चाहिए। इस पुरुषार्थी जीवन में हम सभी को जीवन में हिम्मतवान चाहिए, बनना जरूरी है। जो हिम्मतवान बनता है, हिम्मत रखता है, वही इस ज्ञान मार्ग में चल सकता है। नहीं तो जो सोचता है लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले ऐसे बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स, वो फिर ज्ञान में नहीं चल सकता है। हिम्मत रखना पड़ता है, यार कोई कुछ भी बोले, अरे चलो। कोई भी कार्य करने के लिए पहले हिम्मत चाहिए, लेकिन उस कार्य को अंत तक निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए, असीम मनोबल चाहिए। तो बाबा हमें हिम्मत भी देते हैं, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। तो बाबा हमारे साथ है, वो हमें हिम्मत, हम हिम्मत रखते हैं तो बाबा और आगे बढ़ाते हैं, और अंत तक भी साथी बनकर कितने भी आंधी तूफान कुछ भी आए, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो देखो आप जब चलते हो, आप हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो कोई बम्प्स आ गया, कोई खड्डा आ गया, तो ब्रेक मारना पड़ता है, स्लो होना पड़ता है, नहीं तो गिर पड़ेंगे। लेकिन जब कोई उड़ता है तो पहाड़ भी छोटे छोटे बम्प्स जैसा लगता है। जब फ्लाइट उड़ती है 33,000 फीट तक ऊपर चला जाता है, एकदम बादलों फादलों से सब ऊपर। क्यों ले जाते हैं जानते हो? क्योंकि आप फ्लाइट अगर नीचे नीचे उड़े तो अगर एक पंछी भी टकरा जाए ना, वो प्लेन क्रैश हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि फ्लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटा सा कुछ कंकड़ भी उसमें लगेगा तो एकदम क्रैक हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल जहां पंछी वंछी नहीं हो सकते हैं, कोई बादल फादल नहीं हो सकता है, एकदम ऊपर ले जाते हैं। फिर वहां आप ऊपर चला जाता, जब तक वो बादल के बीच में है देखना आपको थोड़ा टर्मेल फील होगा, लेकिन एकदम ऊपर जब चला जाता है देखना आपको पता नहीं चलेगा कि प्लेन चल रही कि क्या है, एकदम स्टिल हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ऐसे ही जब हम चढ़ती कला, चलती कला, दौड़ती कला, उसमें कितने सारे विघ्न ऑब्स्टकल्स आते रहते हैं, फिर हांफते रहते हैं, थकते रहते हैं, लेकिन जिसकी एकदम उड़ती कला हो गया, एक रस बिल्कुल, उसको कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, चल सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी उड़ती कला का समय है। एकदम तेज स्पीड में चलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप बहुत जोर ड्राइव करना चाहते हो, टू व्हीलर में ड्राइव करना चाहते हो बहुत तेज, अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट। इधर उधर देखेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट। ठीक इसी तरह बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम तीव्र प्रसाद करना चाहते हो, अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो हो गया हो गया, उसको पास्ट इज पास्ट, और मुड़ के नहीं देखना, अभी मुझे क्या करना है। मैं जब ज्ञान में आया एकदम शुरू शुरू में नया नया था, मुझे हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी मिले, जो जगदीश भाई को जानते हैं हाथ उठाइए, और थोड़े ही जानते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में हमारी दादियां जैसे बहुत वरिष्ठ हैं, ऐसे भाइयों में से सबसे वरिष्ठ भाई हमारे जगदीश भाई जी हैं, जो ये संस्था का मुख्य प्रवक्ता थे, चीफ स्पोक्समैन थे। हमारी संस्था की सारी किताब उन्होंने लिखा था, बाबा ने उनको वरदान दिया था, तुम गणेश हो। 300 से ज्यादा किताब उन्होंने अकेला लिखा, आप सारा जीवन पढ़ भी नहीं पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा सौभाग्य रहा उनसे मिलने का, एक बाप समान व्यक्तित्व है। मैं ब्रह्मा बाबा से तो मिल नहीं पाया साकार में, परंतु जगदीश भाई जी से मिलके मुझे ऐसा लगा सचमुच जैसे ब्रह्मा बाबा को पूरा एकदम कॉपी करके डुप्लीकेट ब्रह्मा बाबा। तो जगदीश भाई जी को जब मिला मुझे, उन्होंने कहा, चलो एक मिनट बाबा को याद करें, सभी संकल्प विराम, एक सी बाबा दूसरा ना कोई, एकदम एकाग्र हो जाए। सुना रहा था कि जब मुझे जगदीश भाई जी मिले एकदम शुरू शुरू में, मुझे उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। उन दोनों में बहुत यंग एज था, मैं एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन जॉब करता था। तो मैं बोला, भाई साहब मेरा जीवन का 25-26 साल बर्बाद कर दिया। तो उन्होंने कहा, नहीं, भगवान को पता है, अगर आप पहले ज्ञान में आते, आप मेडिकल पढ़ाई पढ़ते कि स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ते, आप हॉस्टल में रहते थे तो आपको शुद्ध भोजन कहाँ मिलता। अभी देखो आप सब बातों से, आप पढ़ाई पूरी हो गई, आप जॉब कर रहे हो, आप स्वतंत्र हो, यंग हो, जो चाहे सब कर सकते हो। तो भगवान को पता है किस आत्मा को किस समय जगाने का है, तो इसलिए पीछे मुड़ के और नहीं देखना है, अभी से क्या करना है सोचो। तो इसी प्रकार पुरुषार्थी जीवन में अगर बार बार पास्ट बातें अगर सोचते रहेंगे तो कभी भी तीव्र पुरुषार्थी नहीं कर सकते, उड़ती कला कभी नहीं अनुभव होगा। फुल स्टॉप, जो हो गया हो गया, वो अभी मर्जीवा जन्म हो गया, ये पिछले जीवन की कहानी है, भूल गए। दूसरी बात है, इधर उधर नहीं देखना है, जो इधर उधर देखेगा वो भी गिर पड़ेगा। अभी समय नहीं है वो भाई क्या कर रहा है, ये बहन क्या कर रही है, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, बिल्कुल नहीं, मैं और बाबा बस, तीसरा ना कोई। ये धारणा अगर जब तक पक्का नहीं करते हैं, हम तीव्र पुरुषार्थी बन ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते हैं, फिर इधर उधर अटकेंगे, फिर श्रीमत में मनमत परमत शास्त्र मत गुरु मत ये सब मिक्स करके फिर भटकेंगे। सारे कल्प में शिव बाबा एक बार ही आते हैं। सारे कल्प हम मनुष्य से सुनते आए, एक बार परमात्मा से सुनने का अवसर मिला है तो भगवान से क्यों नहीं सुने, और किसी का क्यों सुने। तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना को, ये पक्का निश्चय करना है, तो ही जाके हम तीव्र पुरुषार्थी बनकर उड़ती कला में जा सकते हैं, नहीं तो गिर पड़ेंगे पक्का। तो उड़ने के लिए चाहिए नशा, चाहिए खुशी, चाहिए हिम्मत, उमंग साह, दृढ़ता एंड शक्ति। उड़ने के लिए शक्ति चाहिए, ये सब कहां से मिलेगा। इसका आधार है स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा, वो हमें ज्ञान और योग आधार से ये सब चीजें देते हैं। तो जितना पावरफुल योग करेंगे बाबा से शक्ति मिलेगी, और ज्ञान से भिन्न भिन्न स्मृति बाबा हमें जगा देते हैं, मैं कौन हूं, तो हमारे अंदर हिम्मत आ जाता है, तुम्हारे साथ कौन है, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान तुम्हारा साथी है। तो बाबा हमें स्मृति जगा देते हैं, जब वो स्मृति आ जाती है हम शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे हनुमान राम जी से मिलने से पहले रामायण में दिखाते अनाड़ी बंदर ही था, लेकिन जब राम जी से मिला महावीर बन गया। ऐसे ही हम जब परमात्मा को नहीं पहचानते थे, अपने को एक साधारण इंसान ही तो समझते थे, लेकिन अभी बाबा हमें स्मृति दिला दिए कि हम कौन है, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, समग्र विश्व का आधार और उद्धार मूर्त है, हम तेजस्वी फरिश्ते हैं, हम अवतरित आत्माएं हैं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, देव आत्माएं, धर्म आत्माएं, श्रेष्ठ आत्मा है, कितने महान है हम सभी। जब स्मृति आ जाती है, जैसी स्मृति ऐसी स्थिति, सारा खेल संकल्पों का ही है। जब संकल्प हमारा नेगेटिव व्यर्थ हो जाता है, मायूस हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं, संकल्प जब श्रेष्ठ हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, एकदम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा हमें जो रोज पढ़ाते हैं, ये सारे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना ही है। मुरली में क्या है, सारी मुरली में बाबा हमें इतने सुंदर सुंदर संकल्प देते हैं जिससे हम एकदम, हमारी एकदम कपाट खुल जाता है, एकदम जागृत हो जाते हैं। आपको मैं एक बात सुनाता हूं। एक बार एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आए थे, तो उनको मैं लेके पांडव भवन के सामने, हमारे ओम शांति भवन के सामने, क्लास का टाइम पूरा होने को जा रहा था, तो वहां लेके वो सामने खड़ा था। मतलब कि हमारा अभी पूरा यूनिवर्सिटी की अभी क्लास पूरी हो जाएगी, सभी आएंगे, फिर हम जाते हैं, तो खड़े थे। तो आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, जो क्लास पूरा होने के बाद सबको टोली मिले है कहीं? देखिए, एक ही यूनिवर्सिटी है जहां हजारों संख्या में स्टूडेंट भले हो, लेकिन रोज सबको टोली मिलती है। तो सब टोली लेके उतरते हैं एकदम मुस्कुराते हुए, चेहरा खिला हुआ, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी एकदम मुस्कुराते हुए सब उतर रहे हैं। वो एकदम स्पेलबाउंड हो गए, बोले कि मैं ऐसा इतने स्कूल कॉलेज में पढ़ाया हूं, इतने कॉलेजेस में, इतने यूनिवर्सिटीज में, ऐसा यूनिवर्सिटी कभी नहीं देखा। जो सब जैसे स्कूल कॉलेज छुट्टियां होती है, कैसे होते हैं बच्चे, भागेंगे दौड़ेंगे, उसका चेहरा कैसा होता है, लेकिन यहां सब खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतर रहे। बोले कि अरे क्या वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। तो बाबा हमें रोज जो मुरली पढ़ाते हैं, उसमें एकदम नशा, खुशी, उमंग, उत्साह भर देते हैं हमारे अंदर। तो बाबा की मुरली ये आधार है। जब हम बाबा की मुरली बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर उमंग उत्साह तीव्र हो जाता है, स्मृति जागृत हो जाती है, नशा चढ़ता है। और जितना बाबा के साथ योग लगाते हैं, भिन्न भिन्न समान का अभ्यास करते हैं, सारा दिन योग में बैठे बैठे फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करो। संकल्प द्वारा आप कहां से कहां चले जाओगे, यहां बैठे बैठे। बाबा कहते दुनिया में सबसे तीव्र यंत्र है तुम्हारा संकल्प, उससे पावरफुल रॉकेट और कोई है ही नहीं। एक सेकंड में तीनों लोगों का शेयर करके आ जाते हो। तो हमारी स्थिति अगर पावरफुल है, तो हम कहां से कहीं उड़ के जा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभ्यास करो। ये देहभान सबसे बड़ा विघ्न है, ये मिट्टी है, उड़ने के लिए उड़ने नहीं देता है। तो बाबा कहते देहभान को भूलो, पहले अभ्यास करो। जब बैठते हो कि ये शरीर, इसमें मैं आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, एक प्रकाश का पुंज हूं, एक झिलमिल सितारा हूं, एक डिवाइन लाइट हूं। मेरा शरीर अगर है भी तो एक प्रकाश का शरीर है, एक लाइट का शरीर है, एक सुंदर लाइट का शरीर, बिल्कुल हल्का, और एक सुंदर प्रभामंडल है, एक ब्यूटीफुल ताज, प्रकाश का ताज है, एक औरा है, और सुंदर उमंग सारूपी पंख है, और एकदम उड़ रहा हूं मैं, एकदम हल्का होकर उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं। अनुभव करो, बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा चित्र को खींचो कि मैं ऐसा फरिश्ता हूं, ऐसा लाइट हूं, ऐसा लाइट हूं, उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं। और धीरे 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 ये आकाश आवाज की दुनिया से ऊपर 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 सूर्य चांद सितारों से ऊपर पहुंच गया, बिल्कुल एकदम सूक्ष्म बदन में, जहां चारों ओर चांदनी सा प्रकाश, शुभ्र ही शुभ्र, और चारों तरफ अनंत शांति है। वहां फरिश्तों का राजा बाबा मुझे आह्वान कर रहे, आओ मेरे मीठे बच्चे। देखो एकदम दूर से बाबा से शक्ति के अनुभव करो, पहुंचे उधर बाबा से शक्ति लो, एकदम पावरफुल बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के यहां से मस्तक से जैसे एकदम लेजर बीम की तरह किरणें निकल रही हैं, दोनों नयनों से जैसे लेजर बीम निकल रहे हैं, बाबा के बरद हस्त से किरणें निकल रहे हैं, और मुझ आत्मा में एकदम मैं शक्तियों से भरपूर होकर मेरे अंग अंग में प्रवाहित हो रहा है, चार्ज हो गया, मैं बाप समान स्थिति का अनुभव कर रहा हूं, मैं भी उड़ रहा हूं पूरा एकदम हल्का हल्का, डबल लाइट। अमृत वेले नुमासाम, ये अभ्यास करना है। बाबा के साथ विश्व परिक्रमा लगाना है, चारों तरफ अंतरिक्ष में पूरा परिक्रमा लगा रहा हूं, ऊपर से एक एक देश की दुर्दशा देख रहा हूं, कैसे कहीं युद्ध हो रहा है, कैसे मनुष्य हाहाकार हो रहा है, कैसे बीमारियों से, कैसे दुनिया में कैसे तबाही मची है, तो ये सब ऊपर से मैं देख रहा हूं, सबको सकाश दे रहा हूं बाबा के साथ। हमारी दादी जानकी जी कहती थी कि आप कैसे योग लगाते हो, मैं अमृत वेले जैसे हनुमान अपने कंधे में राम जी को, लक्ष्मण जी को बैठा के उड़ता है, मैं भी सवेरे सवेरे त्रिमूर्ति लाइट धारी बन जाती हूँ। सवेरे उठ के एकदम लाइट के शरीर में, एक कंधे में ब्रह्मा बाबा को, एक कंधे में मम्मा को, ऊपर शिव बाबा को बैठा देते हो और तीनों से एकदम लाइट जल रही है और मैं ऊपर उड़ती रहती हूँ, सबको सकास देती हूँ। दादी कहती, तो अगर आप उड़ती कला का अनुभव करना है तो सवेरे अमृत वेले नुमा शाम अभ्यास कीजिए। मैं एक फरिश्ता हूं, मैं एक प्रकाश की काया में एक दिव्य फरिश्ता, दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, एक दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूं। इस समान को बार बार अजपा जप जैसा चिंतन कीजिए, विजुअलाइज कीजिए उस दृश्य को, उड़ते रहिए एकदम बिल्कुल। सवेरे शाम अगर ये अभ्यास करेंगे, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास करते करते जब ये हो जाएगा, सारा दिन भी देखना है आपको कैसा लगेगा एकदम जैसे उड़ रहा हूं। आजकल तो भट्टियां, आप तो यहां फिर भी बहुत अच्छे हैं, आप छोटा सा ग्रुप है, आप हमारे शांतिवन में जाओ देखो हजारों में भट्टियां होती है, लेकिन वो अनुभव इतने भीड़ भड़ाका में होना डिफिकल्ट है। हम जब शुरू शुरू में आए थे यहां, ये ज्ञान सरोवर नहीं था, शांतिवन नहीं था, खाली पांडव भवन नहीं था, तो पांडव भवन में जब भट्टी होती थी हमारी दादियां संदली में बैठ के योग कराती थी, क्या शक्तिशाली वातावरण में, कहता हूं 3 दिन भट्टी होती थी, मैं एक रोटी खाने से भी ऐसा लगता था मेरा पेट भर गया, 1 घंटा सोने के बाद लगता था हो गया, बस चलते समय मेरा पांव नीचे है कि नहीं ऐसा नहीं लगता था मेरा पांव नीचे है, मैं जैसे एकदम हल्का उड़ रहा हूं। 3-3 दिन 4-4 दिन ऐसा अनुभव होता था। तो अगर सवेरे शाम ऐसा अनुभव करेंगे उड़ती कला का, फरिश्ता स्वरूप का, तो सारा दिन व्यवस्थित रहेगी, सारा दिन सुंदर सुंदर सोमान में रहना, क्योंकि फरिश्ता हूं मैं, एक अवतरित आत्मा हूं और विश्व कल्याणकारी हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, भिन्न भिन्न बाबा जो बहुत सुंदर सुंदर सोमान दिए हैं, सोमान का अभ्यास करना, मैं ऐसा हूं। संकल्प द्वारा ही हम उड़ सकते हैं, बाकी शरीर द्वारा तो शरीर का भान ही नहीं रहेगा बिल्कुल, मैं शरीर हूं कि नहीं, एकदम सुंदर अनुभव करेंगे। फिर बाप समान स्थिति बनाना भी बहुत सहज अनुभव होगा, कभी कभी फरिश्ता हो जाए, कभी कभी एकदम बिल्कुल संकल्पों से बिल्कुल एकदम ऊपर उड़ जाए, सूक्ष्म वतन से भी बिल्कुल ब्रह्मलोक में, जहां चहु और सुनहरी लालिमा, अखंड ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व, अनंत शांति, बिल्कुल एकदम वहां पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल देख रहे हैं बाबा सामने एकदम चमक रहे हैं, शिव बाबा, बाबा के एकदम नजदीक पहुंच गया, बिल्कुल बाबा के सन्मुख हूं, समीप हूं, बाबा में समा गया, मैं शिव शक्ति हूं, बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप हूं। अनुभव के लिए देखना, बिल्कुल दुनिया का कोई संकल्प न रहे, बाबा और मैं बस हम दोनों कंबाइंड, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। 1 मिनट 2 मिनट भी ये अभ्यास अनुभव होगा तो देखना इसका असर कैसा रहता है, सारा दिन फिर कैसा एकदम आपको एकदम शक्तिशाली स्थिति की अनुभूति कराएगा। तो उड़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, इसके लिए उमंग सह चाहिए, और उमंग सह के लिए बाबा की रोज मुरली अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से, मुरली ही एकमात्र स्रोत है, इधर उधर किताब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं, बाबा की मुरली पढ़िए, मुरली से ही बहुत सुंदर सुंदर बाबा जो सोमान देते हैं उसका अभ्यास कीजिए। और उड़ती कला के लिए और दूसरा साधन है संगठन, संगठन की शक्ति। आप देखे होंगे जब पंछियां ऊपर उड़ती हैं अकेले नहीं उड़ते हैं, पंछियों को देखे हो जब दूर दूर जाते हैं, सीजन चेंज होता है तो पंछियां झुंड के झुंड एकदम हजारों माइल तक उड़ के जाते हैं, दूसरे कहीं दूसरे देश तक चले जाते हैं। वो जब पंछियां उड़ते हैं आप देखना एकदम झुंड में उड़ते हैं, सामने एक पूरा लीडर टाइप का होगा, बाकी ऐसे झुंड होके उड़ते हैं पूरा ऐसा, वो थक जाता है तो फिर शामिल हो जाएगा, फिर नया कोई जाएगा, क्योंकि जो सामने रहता है उसको सबसे ज्यादा एकदम ये करना पड़ता है, तेज ये जो हवा है उसको फेस करना पड़ता है, तो झुंड में उड़ते हैं तो इसलिए वो थकते नहीं है, पूरा पहुंच जाते हैं। आप अकेले पुरुषार्थ करेंगे तो कभी सुस्ती आ सकती है, हो गया बस आज इतना करो, लेकिन बाबा इसलिए कहा कि बाबा और संगठन कभी नहीं छोड़ना, अंत तक संगठन नहीं छोड़ना, संगठन में बल है, शक्ति है, तो कोई एक थोड़ा सा सुस्ती करेगा तो दूसरा उसको जगा देगा, इसलिए कभी भी आप ग्रुप बनाइए हमेशा तीव्र पुरुषार्थी का ग्रुप, देखना कभी मिस नहीं होगा, जो भी कार्य करेंगे संगठन में करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो इसलिए बाबा कहते संगठन के शक्ति को भी समझो, बाबा की शक्ति को समझो और उमंग उत्साह में सदा रहो तो आप मंजिल बहुत दूर नहीं नजदीक पहुंच जाओगे। अगर अभी लास्ट समय में ढीला ढाला पुरुषार्थ करेंगे तो क्या होगा, फिर कल्प कल्पांतर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी फेल हुए तो कल्प कल्प, इसमें कोई सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन की कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन नहीं है। दुनिया में फेल हो जाओ तो दोबारा एग्जाम देके पास हो जाओगे, यहां तो अभी नहीं तो कभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं तो कहूंगा जो फर्स्ट टाइमर भाई बहने आए हो, आप बहुत लेट आए हो, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा कहते इस पढ़ाई में कोई कितना भी लेट आए अगर तीव्र पुरुषार्थी बन जाए तो वो लास्ट सो फर्स्ट हो सकता है। मैं जब शुरू शुरू में आया यहां, हमारे विश्वरतन दादा को एक बार पूछा कि दादा मैं इतना लेट आया, इतना साल पीछे, कैसे करेंगे, कैसे पुरुषार्थ करूंगा? तो दादा ने कहा कोई कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो और एडमिशन अब एग्जामिनेशन नजदीक आ गया तो क्या आप उसमें वो भिन्न भिन्न जो स्पोर्ट्स है या कोई उसमें कोई कॉम्पिटिशन है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? किसी में इंटरेस्ट नहीं, सीधा पढ़ाई में कंसेंट्रेट करना पड़ेगा। इसी प्रकार अभी लेट आए हैं, कहीं में भी इन्वॉल्व नहीं होना है, अभी अपनी पढ़ाई, बस मैं और बाबा। बाबा क्या पढ़ाते हैं ज्ञान योग में फोकस रखिए, हमारी दीदियां आपको गाइड करेंगे। किसी बात में नहीं जाना है, किसी भी बात में नहीं जाना है। हम जैसे किसी कॉलेज में हम जाते हैं एडमिशन लेते हैं तो किसी को देखते हैं क्या, मुझे कैसे फर्स्ट डिविजन पास होना है, वो कॉलेज में कौन सा टीचर को चेंज कर देना चाहिए, कॉलेज का क्लासरूम का दरवाजा उधर होना चाहिए, ये सब सोचते हैं क्या? हम जैसे तैसे वहां पढ़े करके मुझे कैसे पास करना है सोचते हैं। ऐसे ही कई बाबा के बच्चे आएंगे सेंटर में, अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना शुरू कर देंगे, बहनों को डायरेक्शन देना शुरू कर देंगे, फिर थोड़े दिन के बाद ओम शांति। अरे हम आए हैं अपना जीवन बनाने के लिए, बाबा क्या कहते सुनना है। तो मेरा तो एक शिव बाबा, बोलो सभी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न को, ये मंत्र पक्का, बाबा और मैं बस। देखो फिर एकदम मूर्ति कला, बाबा कहां से कहां पहुंचा देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, ओम शांति। अभी वो गीत बजाओ भाई जी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, सभी वो गीत गाएंगे। ठीक है, वो गीत के साथ साथ गाएंगे आप भी, देखो मजा आएगा। गीत गाना भी योग है, आपको पता है, आप गीत गुनगुनाते रहो गुनगुनाते रहो, वो भी योग है। माताएं जब खाना बनाती हो टेप रिकॉर्डर बजता रहे। मैं जब ज्ञान में शुरू शुरू में आया, मुझे जगदीश भाई जी ने पूछा कि आपका योग लगता है, तो मैं बोला भाई साहब मेरा दिमाग तो बुद्धि तो बंदर जैसा इधर उधर छलांग लगाता है। तो भाई जी ने कहा कि आपके पास टेप रिकॉर्डर है, उन दिनों में टेप रिकॉर्डर का जमाना था। मैं बोला नहीं है भाई साहब। तो कहते कि एक टेप रिकॉर्डर खरीदो, बाबा के गीत 24 घंटा बजाते रहो, सुनते रहो, देखना एकदम आपका मन ठीक हो जाएगा। मैं वही किया। तो माताएं जब खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, कुछ कर रहे हो, बाबा का गीत बजता रहे, गुनगुनाते रहे, गुनगुनाते रहो, वही भी योग है, उसी में आप नाचते रहोगे। मैं आपको दुनिया की बात बताता हूं। मैं जब बॉम्बे में एनेस्थेसियोलॉजी ट्रेनिंग ले रहा था सायन मेडिकल कॉलेज में, वहां ऑपरेशन थिएटर बहुत बड़ा बड़ा होता था। ऑपरेशन थिएटर में काट फीट होता है, कितने खून खराबा होता है आप जानते हो, दो दो तीन तीन टेबल एक ही हॉल में, लेकिन वहां बहुत टेंशन का माहौल होता है। लेकिन मैं देखा बिल्कुल किसी को टेंशन है ही नहीं। कैसे? वहां वो कोने में एक डीजे लगा था और सवेरे सवेरे आते ही बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूजिक बजाते हैं, एकदम डिस्को गीत। तो क्या होता है, वहां वो नर्स आएगा चाकू छुरी ये सब लेके आते समय, वो भी डांस करते करते आ रहा है, वो सर्जन भी डांस करते करते आ रहा है, और सब वहां सर्जरी चल रही है, किसी को कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने हमें जो गीत बना के दिए हैं, इतने सारे हजारों गीत, आप गीत सुनते रहो, देखो उमंग उत्साह में उड़ते रहोगे, इतना नशा चढ़ेगा, इतना मजा आएगा। जब हम बुद्धि को खाली रख देते हैं ना, खाली मन शैतान का घर है, इधर उधर बातें आती है। अगर बाबा की गीत सुनते रहो, मुरली सुनते रहो, तो व्यर्थ बातें आएगी नहीं। तो इसलिए बहुत सुंदर गीत बजाएंगे भाई जी हमारे, बजाओ। नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, सभी गाएंगे।
सासों की सांसों की माला में जिसकी यादों है तिरोही, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई, मेरे तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। बाबा ही संसार मेरा,
दुनिया मेरी वही,
बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वही, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो न कोई।
सबका चेहरा खिला हुआ नजर आना चाहिए, थोड़ा मुस्कुरा तो सही, सभी मुस्कुराते हुए गाओ। ताली बजाना भी एक्सरसाइज है, एक्यूप्रेशर हो जाता है होल बॉडी का।
एक उसी से दिल का नाता, एक उसी से नाता है,
इन दिनों को सिवा शिव के और नजर नाता है,
इन नैनों को सिवा शिव के और नजर नाता है। मात पिता शिक्षक सदगुरु बंधु सख सुबोही, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो ना कोई।
गाओ माता है,
मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो ना कोई।
जब से उसको जाना है ऐसा मिला खजाना है, जब से उसको जाना है
ऐसा मिला खजाना है,
पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है,
पाकर अपना मीत सुहाना मन को मिला ठिकाना है,
उसी को पाने की खातिर थी,
उसी को पाने की खातिर थी,
युगों से अखियां रोई,
मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो ना कोई। संगोसी के खेलों खाऊं साथ मेरा सुर चाऊं,
उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं,
उसकी याद में उसके प्यार में सारे सुख अब मैं पाऊं, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो ना कोई, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी लोही। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी लोही। मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो न कोई, मेरे तो सिर्फ बाबा एक दूसरो न कोई।
बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बाबा के गीत गुनगुनाते रहें, उड़ते रहें, देखना एकदम दुनिया शुद्ध सब भूल जाएगा, बिल्कुल उड़ते रहेंगे और मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।